पृष्ठ संख्या एक, प्रथम सत्र, आधुनिक काव्य। एक, मैथिली शरण गुप्त। दो, जयशंकर प्रसाद। तीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चार, सुमित्रा नंदन पंत। पाँच, महादेवी वर्मा। छः, रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरण गुप्त सन 1886 से 1964 ईस्वी द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का नाम सर्वाधिक लोकप्रिय है। रीत युगीन श्रृंगारिकता, समस्या पूर्ति जैसी काव्य मनोवृत्तियाँ जो भारतेंदु युगीन कविता में भी छाई रही हैं और ब्रजभाषा के माधुर्य के साथ बढ़ती रहीं, उसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से कवि सम्राट हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा तथा रामचरित उपाध्याय जैसे कवियों ने युगानुरूप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रूप में मोड़ दिया तथा कविता को अबाध जड़ता से निकालकर बहुत हद तक प्रगति और स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा किया। ब्रजभाषा के व्यामोह को त्याग कर इन कवियों ने खड़ी बोली को न केवल काव्य में प्रतिष्ठित किया बल्कि उसमें महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, कथा काव्य, मुक्तक काव्य, चरित काव्य, चंपू काव्य, नाट्य काव्य आदि लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में भी ब्रजभाषा की ही तरह उत्तम कविता हो सकती है। यद्यपि प्रारंभ में इन रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता, नैतिक आदर्शपन और शुष्कता दिखाई पड़ती है, किंतु वह आगे चलकर छायावादी कविता में अपनी पूर्ण सरसता, स्वच्छंदता, लाक्षणिकता और चित्रात्मकता के साथ माधुरी के वैभव का स्पर्श भी करती है। भारतीय संस्कृति के उद्गाता कविवर मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। काव्य रचना की ओर इनका झुकाव बचपन से ही था। मात्र 15 वर्ष की अवस्था में जब एक छंद रचकर इन्होंने अपने पिता को सुनाया तो पिता ने इन्हें सत्व कवि होने का आशीर्वाद दिया। हिंदी के अतिरिक्त गुप्त जी को संस्कृत तथा बंगला का भी पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने स्वाध्याय के जरिए अपने कवि जीवन की तैयारी को पूर्ण किया था। आगे चलकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की गुरुत्व प्रेरणा से उनकी काव्य प्रतिभा का पूर्ण पल्लवन हुआ तथा हिंदी संसार उनके रचना सुगम से सुवासित हुआ। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने उन्हें हिंदी का प्रथम कृति कवि कहा है। सन 1964 ईस्वी में माँ भारती की निरंतर साधना करते हुए गुप्त जी ने इस पार्थिव लोक से महाप्रायण किया। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक में निकलती थी। कालांतर में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से उनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। द्विवेदी जी के पृष्ठ संख्या दो, आदेश, उपदेश तथा स्नेह से इनकी काव्य कला में निखार आता गया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि यूनाइटेड कामा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव और प्रोत्साहन से जो तीन कवि रचना कर्म में प्रावृत्त हुए उनमें मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और पंडित लोचन प्रसाद पांडे थे। इनमें भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों, मान्यताओं और तपश्चर्या की फलश्रुति थे मैथिली शरण गुप्त, यूनाइटेड कामा बंद। पूरे 2 दशकों तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का निर्बाध आचार्यत्व छाया रहा। काव्य रचना की दृष्टि से गुप्त जी ने तो आचार्यत्व की दृष्टि से द्विवेदी जी ने पूरे युग का प्रतिनिधित्व किया है। वास्तव में श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे ने जिस स्वच्छंदतावाद का परिचय दिया उसे गुप्त जी ने आगे बढ़ाया। प्रतंत्रता के युग में स्वतंत्रता का जयघोष करने के कारण देश में उन्हें राष्ट्रकवि के पद गौरव पर आसीन किया। आगरा विश्वविद्यालय ने 1948 ईस्वी में उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया तो 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। काव्य कृतियाँ, गुप्त जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं तथा महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, चंपू काव्य आदि सब कुछ लिखा है। गुप्त जी की खड़ी बोली की पहली कविता हेमंत शीर्षक से 1907 ईस्वी की सरस्वती पत्रिका में छपी, जबकि उनका पहला काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तदुपरांत उनकी अन्य काव्य कृतियां जयद्रथ बध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, झंकार 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 तथा विष्णुप्रिया 1957 आदि का प्रकाशन हुआ। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध तथा वृत्त संहार उनके अनुदित काव्य हैं। साकेत महाकाव्य, भारत भारती खंड काव्य तो यशोधरा प्रसिद्ध चंपू काव्य है जो गुप्त जी की अच्छे कीर्ति के आधार हैं। इसके अतिरिक्त तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नाम से तीन प्रगीत नाट्य काव्य भी गुप्त जी ने लिखे हैं। गुप्त जी की कविताओं का वर्ण्य विषय राष्ट्रीयता, देश प्रेम, अतीत का गौरवगान, वर्तमान की दुर्दशा, सांस्कृतिक पराभव तथा प्रकृति चित्रण आदि हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक कथानकों को आधार बनाकर युगीन समस्याओं का चित्रण करना गुप्त जी की अपनी विशेषता है। गुप्त जी वैष्णव आस्थी राम भक्त कवि हैं, जिसके कारण उनके गीतों में अर्चना, वंदना, आराधना और समर्पण का भाव भी देखा जाता है। उनकी कविताओं का प्रयोजन केवल आनंद या मनोरंजन नहीं है, बल्कि आदर्श नैतिकता और समाजोपदेश भी उनके मूल में है। गुप्त जी का स्पष्ट मंतव्य था कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। गुप्त जी की कृतियों में इस आदर्श के कारण ही स्थूल इतिवृत्तात्मकता तथा कहीं कहीं निरसता भी आ गई है, किंतु उनके गीतों और प्रकृति संबंधी रचनाओं में पूर्ण सरसता और मनोहरता है। उन्होंने जीवन पर्यंत आशावादिता की सीख दी और कहा कि नर हो न निराश करो मन को। उनका कवि व्यक्तित्व पराधीन के दिनों में भी स्वाधीन होने तथा राष्ट्र की सामूहिक शक्तियों के उन्नयन के लिए भारत भारती में ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। मानस भवन में आज जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। गुप्त जी ने जीवन पर्यंत राष्ट्रीयता की इस भावना को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। भारत भारती लिखकर जहाँ उन्होंने स्वतंत्रता के अमर बलिदानियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं साकेत में राम के भगवत चरित्र का मानवीकरण करते हुए कैकेयी और उर्मिला जैसी उपेक्षित नारी चरित्रों के गरिमापूर्ण महत्व को स्थापित किया। यशोधरा भी उनकी उदात्त नारी भावना की ही एक कड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। गुप्त जी की भाव व्यंजना में सर्वत्र गंभीरता के दर्शन होते हैं। उनकी कल्पना भी स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करती। सरल, शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके गुप्त जी ने सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली भी ब्रजभाषा से कम नहीं है। लय, तुक, छंदों, गीतों, अलंकारों से सज्जित कर उन्होंने काव्य में भी खड़ी बोली को प्रतिष्ठित कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में उनके इस ऐतिहासिक कार्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा कि कविता के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त ने सफलतापूर्वक ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली का प्रयोग किया। उनके प्रयत्न के बिना छायावादी कविता उतनी तेजी से प्रगति न कर पाती। और आचार्य शुक्ल ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा कि बाबू मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में चलते हुई खड़ी बोली का परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े छंदों में पूर्णतया देखने में आया। पृष्ठ संख्या 4। उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मंच जाने की पूरी आशा होती है। यूनाइटेड कमांड और पुनः देश की जनता का प्रतिनिधि कवि मानते हुए लिखा कि यूनाइटेड कमांड गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि निसंदेह कहे जा सकते हैं। यूनाइटेड कमांड गुप्त जी की रचनाओं में प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, सत्याग्रह, मानवतावाद तथा विश्व प्रेम की झलक हमें सहज ही देखने को मिलती है। इसीलिए वह भारतीय संस्कृति के अमर कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त और यशोधरा। खंड काव्य यशोधरा गुप्त जी की गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है, जिसमें उन्होंने पति परित्यक्ता यशोधरा के नारी हृदय की कोमल भावनाओं की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इसका कथानक तथागत के महाभिनिष्क्रमण की घटना से संबंधित है। वास्तव में यशोधरा की रचना प्रेरणा कवि को उर्मिला के चरित्र से मिली थी। इसका मुख्य रस विप्रलम्ब श्रृंगार है, जो गुप्त जी का प्रिय विषय है। साथ ही इसमें करुण, शांत और वात्सल्य रसों की भी मनोरम सृष्टि हुई है। इसमें गुप्त जी की वैष्णवी भावना का प्रतिपादन भी हुआ है। अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त का शुल्क चुकाते हुए इसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि यूनाइटेड कॉमा, मेरी वैष्णव भावना ने तुलसी दल देकर यह नैवेद्य बुद्ध देव के सम्मुख रखा है। यूनाइटेड कॉमा बंद। नारी भावना स्वच्छंदात्मकता, गीतात्मकता, प्रकृति चित्रण, कल्पना प्रवणता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, मानवीकरण आदि छायावाद की अनेक विशेषताओं को यह सुधरा में देखा जा सकता है।